और अभी सतीश भाई जी पहुंच चुके हैं, जो गीतों गीत के द्वारा आप सभी का इस भट्टी में स्वागत करेंगे। सतीश भाई जी से भी सब परिचित है ना, मधुरवाणी ग्रुप। आप बहुत सुंदर लिखते हैं और बहुत अभी अभी ज्ञान सरोवर में सिक्योरिटी विंग में आप सेवा करके, वहाँ भी ये कॉन्फ्रेंस चल रही है बाबा की, वहाँ भी सेवा देखे आए और यहाँ भी आ गए, फिर कल नीचे भी जाएंगे, जहाँ बुलाओ जैसे हमेशा एवर रेडी रहने वाले बच्चे, आपका भी स्वागत है।
ओम शांति। कितना शुभ दिन है आपके लिए, एक तो मधुबन में आना हुआ, आज जन्माष्टमी का दिन है। सारी दुनिया में जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है, कुछ वही रंग लेकर आपके बीच में आए हैं। दादी जी की भी स्मृति के दिन है, बहुत पिक पॉइंट पर आप आए, बहुत अच्छे मौके पर आए हैं। अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत कर लें। कल से आप साइलेंस हो जाएंगे, आज ताली बजा सकते हैं एक बार जन्माष्टमी की धूम में। चलिए हम स्वर्ग चलते हैं।
दादी के दिन पे मधुबन में आ रहे हैं, भट्टी सजा रहे हैं। नवयुग नजारे वो प्यारे प्यारे, नवयुग नजारे वो प्यारे प्यारे, अखियों में छा रहे हैं, खुशियों में गा रहे हैं। मोदी नगर वाले देहरादून वाले, जन्माष्टमी पे दादी के दिन पे, जन्माष्टमी पे दादी के दिन पे मधुबन में आ रहे हैं, भट्टी सजा रहे हैं।
चले जाए सतयुग में,
अजब नजारे वो करके इशारे, बाल बालंग हम हमको पुकारे। अजब नजारे वो करके इशारे, बाल बालंग हमको पुकारे। जमुना के तीरे वो धीरे धीरे, जमुना के तीरे वो धीरे धीरे, जमुना के तीरे वो धीरे धीरे, श्री कृष्ण बुला रहे हैं, मुरली बजा रहे हैं। रंग बिरंगी वो दुनिया निराली, फल फूलों से लदी हर डाली रंग, रंग बिरंगी वो दुनिया निराली, फल फूलों से लदी हर डाली, पावन पावन दृश्य सुहावन, पावन पावन दृश्य सुहावन, पावन पावन दृश्य सुहावन, सपनों में आ रहे हैं, महलों में ला रहे हैं, नवयुगन जा
और वो श्री कृष्ण, वो दुनिया कैसे सबके आंखों में छाया है, भुलाया नहीं भूल सकता है वो दृश्य।
राधे सबके नैनों को बांधे, निरख रहे सब अखियों को साधे, श्री कृष्ण राधे सबके नैनों को बांधे, निरख रहे सब अखियों को साधे, प्यारी प्यारी गैया ठंडी ठंडी छैया, प्यारी प्यारी गैया ठंडी ठंडी छैया, प्यारी प्यारी गैया ठंडी ठंडी छैया, माखन खिला रहे हैं सबको नचा रहे हैं।
और तालियां खुशी के दिन में।
राशि मिलन की आओ रास हम कर ले, अतिंद्रिय सुख के झूले हम झूले, राशि मिलन की आओ रात हम कर ले, अतिंद्रिय सुख के झूले हम झूले, धरती पे लाए मन में बसाए, धरती पे लाए मन में बसाए, धरती पे लाए मन में बसाए, बाबा सुना रहे हैं लक्ष्य बता रहे हैं, तेरा दूर वाले मोदी नगर वाले, तेरा दूर वाले जन्माष्टमी पे दादी के दिन पे, जन्माष्टमी पे दादी के दिन पे, मधुबन में आ रहे हैं छठी सजा रहे हैं, श्री कृष्ण आ रहे हैं मुरली बजा रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद सतीश भाई जी ने बहुत सुंदर जन्माष्टमी पर गीत प्रस्तुत किया। जिसकी दुनिया में हम जा रहे हैं वो आ रहे हैं, है ना। बाबा ने बहुत पहले चित्र में मैं आ रहा हूँ, है ना, श्री कृष्ण क्या कहते हैं मैं आ रहा हूँ, तो अकेला कृष्ण थोड़ी आएगा, तो कृष्ण की दुनिया को लाने के लिए तो ये सारा बाबा ने यज्ञ रचा है। शशि बहन का हम स्वागत करते हैं। आप सब जानते हैं, परिचय नहीं दे रही हूँ, मैं दो लाइनें बोलती हूँ।
अच्छा, क्योंकि सदा कल का दिन प्रोग्राम है इसलिए। हाँ, बोलो।
सदा अनुशासित श्रीमत शासित, आपका जीवन कैसा है शशि बहन का? सदा अनुशासित श्रीमत शासित गंभीरता के गुणी हैं आप। सत्यता निर्भीकता न्यायप्रियता, सत्यता निर्भीकता न्यायप्रियता नेतृत्व कला की धनी हैं आप। यज्ञ रक्षक बन, यज्ञ रक्षक बन कारोबार व्यवस्था बखूबी संभालती हैं आप। मीरा सी प्रभु दीवानी संदेशी बन प्रभु का संदेश लाती हैं आप, प्रभु का संदेश लाती हैं आप। आदरणीय शशि दीदी जी, हम सबको आशीर्वचन देंगे।
ओम शांति। आज से आप एक हाथ की ताली बजाएंगे क्योंकि अभी जन्माष्टमी का तो बहुत सुंदर गीत सुना। उस सतयुग दुनिया के नजारे सामने आ गए, वो सब अनुभव किया। तो मधुबन तपोभूमि तपस्वी भूमि प्यारे बाप दादा की विशेष चरित्र भूमि, बच्चों की विशेष पालना की भूमि और आदरणीय दादियों और विशेष महारथी भाई बहनों के विशेष श्रेष्ठ कर्म भूमि में आप सबका मोदी नगर और देहरादून के भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप चाहे इस भट्टी के लिए यहाँ पर पहली बार आए हैं, लेकिन ऐसा सुंदर मौका तो कहाँ मिलेगा, कहीं मिलेगा। दादी जी का महीना हो, कल प्यारी दादी जी का स्मृति दिवस हो, आज जन्माष्टमी का दिन हो और खास करके ऐसे ऐसे दिन इस महीने में आए, रक्षाबंधन भी, स्वतंत्रता दिवस भी, सबके सब त्योहार एक साथ इस महीने में आए हैं। तो इस महीने के अंदर मधुबन में आकर के रहना और बाप दादा की पालना का अनुभव करना ये बहुत बड़ा भाग्य की निशानी है। और वैसे भी आप सभी भाग्यशाली हैं। जब देहरादून की बात आती है तो हमें तो साकार बाबा याद आते हैं। साकार बाबा हमेशा कहते थे कि यहाँ देहरादून और ऋषिकेश में जो भी महात्माएं, महामंडलेश्वर संत आदि रहते हैं, ये भी एक दिन बाबा के घर आएंगे। और इसके निमित्त प्यारे बाबा ने हमारी बहुत स्नेही प्रेम दीदी जी को वहां पर रखा। प्रेम दीदी जी ने प्यारे बाबा के सभी महावाक्यों को साकार किया। प्यारे बाप दादा की शिक्षाओं का पालन करते हुए दीदी वहां न्यारी और प्यारी रह करके सब साधु संतों महामलेश्वर को इतना नजदीक लाया, इतना नजदीक लाया, तो बाबा की वो आशाओं को पूर्ण किया। तो जिस स्थान से आप आए हैं वह स्थान ऐसा है, एक तो बाप दादा की आशाओं की धरनी है, दूसरा उस स्थान पर ऋषि मुनि तपस्वी तपस्या करते रहे हैं, तीसरा वो स्थान टूरिस्ट प्लेस है और चौथा आप सबको प्यारी दीदी मिली, प्रेम दीदी मिली और उनके साथी जो बहने हैं वो आपको मिली। प्रेम दीदी की पालना ली हुई वही पालना का अनुभव करा रहे हैं। तो देहरादून तो वैसे ही फेमस है, लेकिन बाबा कहते हैं कि बाप के दिल तख्त नशीन बच्चे हैं और आपने जितनी पालना ली है उस पालना का अनुभव करने के लिए आप यहाँ मधुबन की भूमि में आए हैं और बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करेंगे। तो जब मोदी नगर की बात आती है तो मुझे प्यारी दीदी मनमोहिनी और दादी प्रकाशमणि गुलसार दादी की याद आती है, क्योंकि मोदी नगर में पहले सेवा तो चल ही रही थी और बाबा कहते ऐसे वीआईपीस को निकालो, वो वीआईपीस आगे जाकर के बाबा का नाम रोशन करे। मोदी नगर में हमारी बहनों ने पहले कितनी सेवा की और ऐसे वीआईपीस को निकाला शायद आप जानते भी या नहीं जानते हो, गायत्री मोदी को तो जानते हो, जानते हैं ना। तो गायत्री मोदी जब बाबा की बनी तो उस समय तो वो दृश्य देखने का ही था, और वो बाबा से इतनी प्यारी और दीदी से उनका इतना प्यार, दादी से भी इतना प्यार, तो वहां पर तो सब महारथी गए हैं, दादी दीदी गुलजार दादी, कोई ऐसा महारथी नहीं था जो मोदी नगर ना गए हो। और भी सारे वीआईपी भाई, ब्रिजमन भाई, निवे भाई, रमेश भाई, सारे के सारे वहां पर गए। मैंने कहा ये भी तो भाग्य की निशानी है कि सब महारथियों का ऐसी धरनी पर कदम पड़ा, तो उनके कदमों के कारण ही अनेक आत्माओं को अनुभव हुए, और उनके कदमों के कारण ही आज आप सबका कितना बड़ा भाग्य बना है। तो जब हम मधुबन में आते हैं तपस्या करने के लिए आते हैं, तो मधुबन तपस्वी भूमि में तपस्या करना ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य की निशानी है। तो बाबा ने तो क्या कहा, ये सब के सब मेरे बच्चे कौन हैं? सौभाग्यशाली हैं, पद्मा पद्म भाग्यशाली हैं और भाग्यशाली। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि जैसे बाप को पहचाना तो भाग्य का सितारा चमक गया। फिर बाबा कहते हैं सौभाग्यशाली वो है जो बाप की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करते हुए आगे बढ़ते हैं, और पद्मा पद्म भाग्यशाली वो हैं जो हर प्रकार की मर्यादा का ब्राह्मण जीवन के अंदर अनुसरण करते हैं, और अनुसरण करते हुए बाप दादा के कदमों पर कदम रखते हुए पद्मों की कमाई करते हैं। तो आज भी बाबा ने हमको क्या कहा कि अभी हमें क्या करना है, बाप समान बनना है, क्योंकि बाबा हमेशा हमें कहते हैं कि समय की भी पहचान दे रहे हैं, चारों तरफ क्या हो रहा है, किस प्रकार की हालतें हैं। तो बाबा ने हमको क्या कहा है, तुम बच्चों को चलता फिरता म्यूजियम बनो। तो चलता फिरता म्यूजियम कैसा होगा, चलता फिरता म्यूजियम कैसा, म्यूजियम में तो बहुत डेकोरेशन करते हैं ना, बहुत सुंदर होता है, उसको अट्रैक्ट करते हैं ना। तो चलता फिरता म्यूजियम के लिए बाबा ने कहा है हर बच्चे को ये ध्यान रखना है हम चलते फिरते फरिश्ते। फिर उस म्यूजियम के अंदर बाबा ने कहा हर एक बच्चे के चेहरे के द्वारा उनको ये महसूसता हो ये यहाँ के इस दुनिया के नहीं हैं, किसी और दुनिया के हैं, अलौकिक हैं, इनके अंदर बहुत कुछ उपलब्धियां हैं। वैसे भी ब्राह्मणों को बाहर वाले देखते ना कहते तो बहुत खुश नसीब है, इनके जीवन में कितनी बातें आती तो भी ये हल्के फुल्के होकर के चलते हैं। तो वो किसने सिखाया, बाबा ने सिखाया। और दूसरी बात आप देख रहे हैं कि साइंस इतनी एडवांस होती जा रही, इतनी एडवांस होती जा रही, साइंस के माध्यम से कहां पहुंच जाएंगे। बाबा ने कहा ये साइंस जो है वो आपके लिए भविष्य में काम आएगी, लेकिन वो भविष्य में तब काम आएगी जब साइंस के अंदर हम साइलेंस की शक्ति को भरेंगे। अब साइंस के माध्यम से क्या है, आकाश में चले जाओ, धरती के अंदर चले जाओ, भारत इतना एडवांस कर रहा है कि मून के चंद्रायन के पास पहुंच रहे हैं, एकदम नजदीक पहुंच गए हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों को कहां पहुंचना है, चंद्रमा के पास पहुंचना है या स्टार्स के पास पहुंचना है या परम धाम में जाना है या सूक्ष्म वतन में जाना है या सतयुग दुनिया में जाना है। अब कहां जाना है पहले बता दो, कहां जाना है, परम धाम में जा रहे। परम धाम में जाके बैठोगे तो यह पुरुषार्थ क्या करोगे, हैं? सूक्ष्म वतन में जाना है क्या, बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन में जाके क्या करोगे, हैं? बाबा ने तो सारा ज्ञान दे दिया, तो कहां जाना है, हैं? सतयुग में जाना है। लेकिन सतयुग में जाने से पहले बाबा ने हम ब्राह्मणों को एक अच्छा काम दिया। बाबा ने कहा है कि आप क्या करो, यहाँ एक स्थान पर बैठे हुए सारे विश्व के अंदर साकाश फैलाओ, सारे विश्व के अंदर शुभकामनाओं के तरंगे फैलाओ, सारे विश्व की आत्माओं को ऐसा बन के दिखाओ, उनको लगे कि हमारे सामने ईष्ट देव आया। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, किसी न किसी बच्चे को श्री कृष्ण बना देते हैं। वो रो भी रहा है, सो भी रहा है, तो भी माताएं उसको गोदी में उठाएंगे, फिर नींद भी कर रहा है, फिर उसको हिलाती रहेंगी, क्योंकि वो जो स्वरूप है वो इतना प्यारा लगता है, चाहे वो रो रहा है, चाहे उसका फेस टेढ़ा हो रहा है, कैसे भी है, सबके सब उसको प्यार करते हैं। तो बाबा ने हमको क्या कहा है कि अपना वो स्वरूप सामने लाओ, आपके स्वरूप को देख करके भगत लोग अपने इष्ट को ढूंढ रहे हैं। तो बट्टी में हमको क्या क्या काम करने हैं, पहला बट्टी के अंदर हमें बिल्कुल साइलेंस में, और बट्टी के अंदर बाबा कहते जो आलतू फालतू संकल्प है, मैं क्या करूं, मेरा पुशार ढीला है, मेरा योग नहीं लगता है, बाबा को कहेंगे, बाबा के सामने बच्चे बैठ जाते, बाबा को कहते थे बाबा मेरा योग नहीं लगता, बाबा भी हंसते थे, अरे मेरे सामने बैठ के मुझे कहता योग नहीं लगता, बाबा को देख रहा और बाबा को कहता मेरा योग नहीं लगता है, बाबा कहते थे अभी भी बच्चे इतने भोले हैं, बाप को पहचाना भी है, लेकिन बाप के सामने बैठ करके वो अनुभव हो वो अभी नहीं। तो इस बट्टी के अंदर योग की बजाय क्या कहेंगे, मैं बाबा का लाडला बच्चा, बाबा ने मुझे चुना है, कितनों में से करोड़ों में से हमको चुना है, बाबा कहते मेरे सिकिलदे बच्चे हैं, बाबा कहते मेरे वीवीआईपी बच्चे हैं, कैसा भी हो, गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, एक बूढ़ी माता कुछ नहीं बोल सकती है, बाबा कहते मेरी लाडली, ये भाग्यशाली है, इसने बाप को पहचाना है, बाप का हाथ पकड़ा है। तो एक तो योग बट्टी के अंदर खुशी में जो भी आलतू फालतू संकल्प है, मेरा योग नहीं लगता, फिर योग बट्टी में क्या करेंगे, मेरा पति ज्ञान में नहीं चलता, बाबा उसको भी ज्ञान में ले आना, फिर मेरे बच्चे नहीं सुनते, बाबा उसको भी ले आना, अरे इस बट्टी के लिए वो थोड़ी है। तो बाबा ने एक बार कहा था कि अगर आप कहते हैं तो बाहर सारी दुनिया वालों के लिए क्यों नहीं कहते। तो बट्टी में ऐसा स्वरूप बन जाना है, ऐसी शक्ति को धारण करना है जो आपके परिवार वालों को भी वो वाइब्रेशन अनुभव। तो कोई भी प्रकार के संकल्प है उसको स्वाहा। दूसरी बात बाबा कहते बट्टी के अंदर बीज स्वरूप बन के, पांडव भवन जो है ना, ये है बीज। बाबा ने यहाँ तपस्या की, बाबा ने बच्चों को तपस्या कराई, देखने में साधारण लेकिन बीज जितना शक्तिशाली उतना पेड़ सुंदर होता। तो आज पांडव भवन जब बाबा के टाइम पर तो बहुत छोटा था, और आज उसके कारण देश विदेश के अंदर कितने सेंटर हैं, कितने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बन गए, चाहे ज्ञान सरोवर देखो, चाहे दिल्ली में देखो, ओआरसी देखो, मोदी भवन देखो, देहरादून देखो, बड़े बड़े सेंटर बनते जा रहे हैं, वह सब के सब इस बीज की रचना के कारण ये सब बड़े बड़े सेंटर बनते जा। लेकिन इस बीज के अंदर जो हमें अनुभव होगा वो अनुभव और कहीं नहीं होगा। तीसरी बात बाबा कहते हैं बीज स्वरूप बन करके शक्तिशाली बन। अभी क्या है, शक्ति जमा करते हैं, फिर कहते थोड़ी कम हो गई, आज यह हो गया, आज हलचल हो गई, आज ऐसा हो गया, इस तरह की कई बातें सामने आती हैं। तो बाबा कहते बट्टी मीन्स सब चारों तरफ से ऐसा शक्तिशाली बन करके जाना। फिर बाबा कहते इस भट्टी के तो साहब को मालूम है, अरे इनको कैसे चांस मिल गया, मोदी नगर को कैसे मिला, देहरादून को कैसे मिला, हमको नहीं मिला, तो सारे आपको याद कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसे वाइब्रेशन फैलाने हैं तो वो वाइब्रेशन जो है सारे विश्व के अंदर पहुंचे। तो आज बाबा हमको क्या कहते हैं, साकाश भी देना है, लेकिन अगर हमको साकाश देना है तो कैसे हम रॉकेट बन के उड़े, रॉकेट बनना चाहेंगे, उड़ना है, रॉकेट जब उड़ाते हैं ना और रॉकेट में कोई व्यक्ति को भेजते हैं ना, उसकी ड्रेस देखिए कैसी होती है, बहुत मोटी मोटी ड्रेस होती है, बहुत मोटी मोटी है, और लेकिन वो इतनी हल्की होती है, और उसका खाना क्या होता है, थोड़ा सा लिक्विड स्टाइल, और वो उड़ते जाते उनके पास क्या होता है, एक ऐसी स्पेशल गैस लेके जाते जिससे वो उड़ते हैं, स्पेशल चीजें होती हैं। अब बाबा कहते हैं अगर आपको रॉकेट बन के, आत्मा तो फास्ट रॉकेट है, लेकिन इस रॉकेट के ऊपर कई प्रकार की बातों का बोझ है, वो बोझ जो है फिर ऊपर उड़ने नहीं देता है। तो बाबा कहते हैं सब संकल्पों से मन के बंधनों को काटे। तो हमें कौन सी ड्रेस डालनी है, बाबा ने कहा फरिश्ता ड्रेस, वो इतनी हल्की होती है, इतनी हल्की होती है, जैसे बाबा वतन से दिखाते ना बच्चों को लाइट की ड्रेस पहना देते हैं, तो वो ड्रेस डालनी है। फिर उसमें हमें कौन सी गैस भरनी है, गैस नहीं भरनी है, हमको उमंग उत्साह की वाइब्रेशन भर, ब्राह्मणों के लिए वाइब्रेशन ही एनफ है, वो वाइब्रेशन ही बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। तो बाबा जैसे बच्चों को सदा उमंग और उत्साह में रखते थे, तो बाबा भी कहते हैं हमेशा फरिश्ते की ड्रेस, उमंग उत्साह के वाइब्रेशन रखो, उमंग उत्साह रहे जिससे आत्मा रॉकेट बन के उड़ती रहेगी, औरों को भी अनुभव होगा कि ये हमारे सामने ईष्ट आके पहुंचे हैं। फिर से आपका स्वागत है, आप सभी अपने ही घर में आए हैं, सब आराम से है ना? अरे इतना कोना मिला वही बहुत बड़ी बात है, वैष्णो देवी जाओ तो सड़क पे सोए रहते हैं, ना खाना है ना बेड, ना क्या क्या होता है, कहीं लैंडस्लाइड हो जाता है, कोई नीचे गिरा पड़े, कोई कहाँ सोए पड़े। यहाँ बाबा के घर में आप सबको क्या मिली, खटिया मिली है। बाबा के टाइम पर सब पट में सोते थे, बाबा कहते थे ये पट राजा और पट रानी आ गए, तो अभी क्या बन गए, खट राजा है? नहीं खट राजा नहीं, बाबा के दिल तख्त नशीन बोलो है, ठीक है ना, खट राजा खट रानी थोड़ी बोलेंगे है? अब क्या बोलेंगे, बाबा के दिल तख्त पर बैठे, बाबा के दिल तख्त पर बैठना कोई कम बात है, बाबा हर बच्चे को कहता है इतना बड़ा तख्त है जिसको बैठना है बैठो। तो सब आराम से है ना, कोई तकलीफ तो नहीं है। अरे इतने भट्टी में आपको चांस मिला, अभी तो बाबा ने कहा था आगे चल करके ऐसा समय आएगा आबू रोड से माउंट तक क्यों लगेगी, वो तो हम देखते हैं ना, शांतिवन में रहते हैं, यहाँ आते हैं चारों धाम के लिए फटाफट ऐसे चक्कर लगाते हैं जैसे मंदिर की यात्रा करते हैं, और फिर बुलाते रहते आओ आओ जल्दी करो, बाहर बस का इंतजार हो रहा है। और आपको कितना बड़ा भाग्य है कि तीन दिन चारों ही धाम की यात्रा करने का, लेकिन यात्रा के साथ साथ आपको वहां बैठने का भी मौका मिल रहा है। लेकिन एक बात बताएं, आप बाबा के कमरे में लंबा टाइम मत बैठ जाना, तो नहीं तो दूसरे बाहर खड़े हो जाएंगे, यहाँ आकर के अनुभव करो। और फिर सबसे बड़ा भाग्य जो है आपको मिला है ऐसे स्थान पर जहाँ आप भट्टी कर रहे हैं। इस हॉल के महत्व को जानते हैं क्या है, ये बाबा की पहाड़ी है। आप एक फोटो देखा होगा ना बाबा ऐसे है ना तपस्या कर रहे हैं, वो पहाड़ी कौन सी, यही है, ये पहाड़ी है। बाबा यहाँ पहाड़ी पर बैठते थे और सब नीचे आंगन में खड़े होते थे, गीत बजता था, धरती को आकाश पुकारे हैं, फिर सब के सब दीदी दादियां सब दौड़ करके आते थे, फिर बाबा यहाँ बुला करके सबको कहते थे सेमिनार करो, सेमिनार कोई दूसरा नहीं, सेमिनार मीन्स तपस्या का, योग का, सेवा के प्लान, सब महारथी यहाँ बैठते थे और तपस्या करते थे। फिर जब बाबा के बच्चे बढ़ने लगे, जब बाबा अव्यक्त हुए, पहले बाबा बाबा के कमरे में आते थे, फिर बाबा हिस्ट्री हॉल में आने लगे। एक बार इतने बच्चे हो गए तो बाबा का आने का प्रोग्राम यहाँ आंगन में रखा था। यहाँ ऑफिस के बाहर बड़ी स्टेज बनाई थी और आंगन में ही बाबा आए थे और चारों तरफ सफेद पोशधारी भाई बहने, ऐसा लगता था ये फरिश्तों की दुनिया है। फिर उसके बाद प्लान किया गया कि कोई हॉल बनाया जाए, तो ये पहाड़ी को तोड़ करके ये हॉल बनाया है। तो एक तो जहाँ आप तपस्या कर रहे हैं, ये है साकार बाबा की तपस्वी पहाड़ी। दूसरा, अव्यक्त बाप दादा जब ये हॉल बने तो अव्यक्त बाप दादा यहाँ आने लगे। अव्यक्त बाप दादा यहाँ बैठते थे और हम सब बच्चे पूरा घेर के बैठते थे, और उस समय कोई सोफा नहीं था, कोई कुर्सी नहीं थी, सब नीचे बैठते थे। एक कुर्सी रखी थी प्यारी दीदी के लिए, बाकी हम सब यहाँ बैठते थे। तो ये हॉल है साकार बाबा मम्मा दादियों की विशेष तपस्या पहाड़ी, और दूसरा अव्यक्त बाप दादा के वरदानों का हाल है। तो ऐसे स्थान पर आपको बट्टी करने का मौका मिल रहा है, और बट्टी करते हुए ये ध्यान रखना है, बाबा देखते थे कोई सुस्ती करेगा, बाबा आ जाते थे। जब क्लास कराते योग चल रहा होता था, बाबा खड़े होकर के सबको दृष्टि देते थे, और जैसे बाबा ने दृष्टि दी सब उड़ जाते थे वतन में। अब इस भट्टी में देखना, बाबा आएंगे आपके पास। अच्छा, आप में से बाबा को देखा कि नहीं देखा किसने, साकार बाबा? नहीं देखा, बस एक ही। अरे बाबा को सबने देखा है कि नहीं, भूल गए क्या? बाबा ने क्या कहा है, जब तक बच्चे हैं मैं तब तक यहाँ हूँ। बाबा तो साथ है ना। बाबा ने कहा मैं बच्चों का हाथ पकड़ के चलता हूँ, बच्चों को उठाता हूँ, बच्चों के सामने आता हूँ, बच्चों से खेलता हूँ, बच्चों से बात करता, फिर कहते बाबा को नहीं देखा है? ऐसे थोड़ी कहना है। बाबा कहते हम तो बच्चों के साथ गए। बाबा के पास जब बाहर वाले आते थे ना, बाबा को कहते बाबा इनसे मिलना, बाबा कहते थे बिल्कुल नहीं मिलूंगा। वो कहते थे नहीं हमको मिलना है, बाबा कहते, वो कहते थे हमको आपके गुरु से मिलना। बाबा कहते उनको बता दो मैं कोई गुरु हूँ क्या? फिर कहते अच्छा इसे इंस्टीट्यूशन के हेड से मिलना। बाबा कहते उनको बोले यहाँ कोई हेड नहीं है। अच्छा, फिर कहते नहीं हमको दर्शन करना है। बाबा ने कहा दर्शन करके क्या करेंगे? जब तक ये नहीं पहचानेगा कि ये भगवान है, मैं उसका बच्चा हूँ, तो प्राप्ति क्या होगी? दर्शन किया बहुत अच्छा था बाबा, अरे क्या मिला? वो तो कुछ नहीं मिला। तो बाबा हमेशा कहते थे मैं अपने बच्चों के साथ बैठता हूँ, बच्चों के साथ खेलता हूँ, बच्चों के साथ चलता हूँ। बाबा हाथ पकड़ करके चलते थे। बाबा की एक बात सुनाते, एक बार क्या था, बाबा जहाँ होंगे ना सब बच्चे साथ चलेंगे। अब बाबा जहाँ उसको छोड़ेंगे नहीं। एक बार बाबा खड़े, हर एक सोचता मैं बाबा का हाथ पकड़ूं। अब कितने सारे बच्चे थे, एक बच्चे ने एक उंगली पकड़ी, दूसरे ने दूसरी पकड़ी, पांच उंगली इधर हो गई, पांच उंगली इधर हो गई, फिर पांच छह ने इधर बाजू पे हाथ रख लिया, और कुछ ने कंधे पे हाथ रख लिया। तो बाबा खड़े हो गए, बोला विराट स्वरूप देखना तो देखो है? तो बाबा खड़े हो गए, बोला देखा मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मेरे इतने सारे बच्चे। दुनिया में किसी के ढेर बच्चे और तंग करे, हाथ लगाए इधर, हाथ लगाए उधर, हाथ लगाए। बाबा कहते थे लाडले बच्चे, संगम में पूरे क्लब के बाद एक ही बार मिलते। बाबा कहते जो लेना लो, जो कुछ अनुभव करना करो। तो ये नहीं हम कहेंगे बाबा को नहीं देखा, बाबा हमारे साथ हैं, बाबा हमें चला रहे हैं। फिर बाबा देखते थे ना, जब योग के टाइम कोई सुस्ती करता था ना, बाबा वरदान दे रहे हैं तो किसको मिलेगा? जो सुस्ती करे उसको पीछे वाले को मिल जाएगा। तो बाबा कहते ऐसा नहीं करना है, और अपनी झोली को भी कैसा रखना है जिसमें छेद ना हो। है कौन सा छेद? संकल्पों का छेद आ जाता है, मन में उदासी आ जाती है, कई बातें आ जाती हैं, अपनी भेंट करते हैं, ये तो हमारे से पुराने हैं, ज्ञान में पहले आए हैं, हम बाद में आए हैं। बाबा कहते बाद में आने वाले और लगे। घर में छोटा बच्चा होता है ना, उसको सब प्यार करते, सब उसको खिलाएंगे, बड़े तो कहेंगे इन्होंने तो बहुत ले लिया। अभी आप जो नए नए हैं उनको बाबा भरपूर करते हैं। अच्छा, ओम शांति, फिर मिलेंगे।
कहाँ छुप गए तुम बाबा।